नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। असम, केरलम और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले से भीषण आग लगी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक, कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक तथा कोलकाता पुलिस आयुक्त के तबादले का आदेश दिया है। आयोग ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी एन रमेश बाबू को सुधार सेवा मामलों के महानिदेशक और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय मुकुंद रानड़े को कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक निकायों को निशाना बनाने की आदि हैं और उनके संवैधानिक अधिकार से संबंधित मामलों का सरकार या संसद से कोई लेना देना नहीं है। श्री रिजिजू ने यह टिप्पणियां राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को लेकर हुई तीखी बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वॉकआउट के बाद की। आयोग के फैसले का बचाव करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उठाया गया मामला एक संवैधानिक निकाय से संबंधित है और इसके फैसलों में न तो सरकार और न ही संसद की कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि सदन में अदालतों और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं के फैसलों पर सवाल उठाना उचित नहीं है और आयोग के पास अपनी शक्तियां हैं और वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 26 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान जारी है। पटना में राज्य विधानसभा परिसर में स्थापित मतदान केंद्र में विधायक सुबह से ही अपना मत डालने पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपना वोट डाला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह जेल से विशेष व्यवस्था के तहत वोट डालने पहुंचे। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा और मतगणना 5 बजे से शुरू हो जाएगी। ओडिशा में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य विधानसभा में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। ये मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और परिणाम आज रात घोषित किए जाने की संभावना है। हरियाणा में भी 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मैदान में 3 उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1-1 तथा 1 निर्दलीय उम्मीदवार। असम, केरलम और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने बताया है कि असम विधानसभा के लिए अधिसूचना आज जारी की गई। निर्वाचन आयोग ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। पुदुच्चेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव संबंधी अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत आज जारी की गई। 23 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 तारीख को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 तारीख है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू कर दी है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,337 स्टेशनों में से सिर्फ 160 स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य पूरे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई है तथा रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजट सिर्फ 63,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार स्टैंडअप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी, ताकि देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ पहुंच सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई स्टैंडअप इंडिया योजना पिछले वर्ष मार्च में समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का नीति आयोग और अन्य विभाग ने अध्ययन किया है तथा लाभार्थियों को ज्यादा लाभ प्रदान करने के लिए इसे फिर से तैयार किया जा रहा है।
जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप योजनाओं की शुरुआत की थी तो ये एक नया विचार था, पर ये महसूस किया गया कि ये केवल शहरी क्षेत्रों या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और इसमें वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नया उद्यम शुरू करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना बैंक की हर शाखा के माध्यम से आरम्भ की गयी और इससे वास्तव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को लाभ हुआ है।
एंड इट हैज एक्चुअली बेनिफिटेड एससी एसटीज एंड विमेन।
सरकार ने कहा है कि देश में स्वरोजगार 2017-18 के 52% से बढ़कर 58% हो गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ श्रमिकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 2017-18 के 295 रुपए से बढ़कर अब 418 रुपए हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि नए श्रम संहिता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और सभी राज्यों को इससे अधिक मजदूरी का भुगतान करना होगा।
अभी लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है, आज तक मंथली सैलरी मिलने वाले लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेबर कोड लागू होने से जिसको मंथली सैलरी मिलती है उसको कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स हो जाएगी, मिनिमम वेज और सैलरी भी फिक्स हो जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स हो जाएगी।
राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत के संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने का प्रावधान है। लोकसभा ने पिछले सप्ताह ही इस विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने देश में कथित एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि संकट में भारत की कोई भूमिका नहीं है।
मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है।
श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता को एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है और उनके नेता जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इतनी गंभीर स्थिति में भी वे राजनीति से पीछे नहीं हटते। इससे पहले शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एलपीजी का मुद्दा उठाया और सरकार पर संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम न उठाने का आरोप लगाया।
यह चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं, कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है, रूमर से सावधान रहिए, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच 2,19,000 से अधिक लोग भारत आए हैं। राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री नायडू ने कहा कि उड़ानों का सुरक्षित संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब जब हवाई क्षेत्र उपलब्ध हुआ तब तक उड़ानें संचालित की गईं। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय विमानन कंपनियों ने 4,300 से अधिक उड़ानें और विदेशी विमानन कंपनियों ने 11,000 से अधिक उड़ानें रद्द की। राज्यसभा ने आज मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई को विदाई दी। उन्होंने आज राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा किया। सदन की कार्यवाही जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गोगोई ने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद मार्च 2020 में सदन के साथ जुड़े थे। ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि घटना के समय आईसीयू में 23 मरीज भर्ती थे। मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया और प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए।
एसपी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है वहाँ संभवतः शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है जो फर्स्ट फ्लोर है जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद जो मेडिकल कर्मचारी है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लेने वाले वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका, इसराइल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। बढ़ते तनाव के बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। ईरान और इराक का वायु क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण इन सभी उड़ानों के लिए वैकल्पिक लंबे मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चुनिंदा गंतव्यों के लिए उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। आज तड़के ईरान के ड्रोन हमले के कारण कुछ समय के लिए उड़ानें स्थगित कर दी गई थी। दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने यात्रियों को उड़ान की नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। आज एक ड्रोन ने हवाई अड्डे के परिसर के पास एक ईंधन टैंक पर हमला किया जिससे भीषण आग लग गई और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया जिससे आग पर काबू पा लिया गया। हवाई अड्डे पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में मदद के लिए अपने जहाज भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस संबंध में अपने मित्र देशों से सहायता प्रदान करने के दबाव के बीच ये बयान आया है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। वित्त मंत्री ने कहा सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले से भीषण आग लगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।